नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी पे 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर मैं हूं आपके साथ शशांक कुमार, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन। उत्तरा, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
धन्यवाद शशांक।
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 8,000 की पब्लिक और बड़ी उम्मीदें, भारत और जर्मनी के बीच का मुकाबला, पर 2-0 से हारना, कहीं ना कहीं रिजल्ट मजा नहीं आया देखकर।
देखिए, रिजल्ट से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया वो ज्यादा निराशाजनक था, क्योंकि आप रिजल्ट किसी के भी फेवर में जा सकता है, खेल है, जीत हार होती रहती है, पर जब आपको वो जज्बा नहीं दिखता एक तरह से खेलने का, तो वो ज्यादा तकलीफ देता है, ज्यादा हर्ट करता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा उन 8-10 हजार दर्शकों के लिए है जो एक वीक डे में दोपहर के टाइम पे 10-11 साल के बाद वहां पे एक मैच हो रहा है, ओलंपिक का पदक जीत के आई है टीम, एक उम्मीद लेके आई थी कि रिजल्ट जो भी हो उनको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, वो जरूर थोड़ा निराश होके वापस गए होंगे, उनके लिए आपको ज्यादा खराब लगता है।
बिल्कुल, और खबरें और भी हमारे पास, विस्तार से चर्चा करेंगे हम उत्तरा के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जर्मनी ने 2-0 से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से पुणे में। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय राइफल संघ ने देश की पहली निशानेबाजी लीग शुरू करने की घोषणा की, और अंडर 17 एशियाई कप फुटबॉल के पहले मैच में भारत ने ब्रुनेई को 13-0 से हराया। तो शुरुआत करते हैं हम हॉकी से ही। जर्मनी ने हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 2-0 से हरा दिया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वर्तमान विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता जर्मनी की टीम ने टीम इंडिया को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया है। क्या कुछ हुआ है, सुनते हैं सरफरोशी की इस रिपोर्ट में।
भारतीय हॉकी टीम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं कर पाने की कमजोरी से कब उबरेगी, ये बड़ा सवाल सभी हॉकी प्रेमियों को सता रहा है। टीम इंडिया इसी कमजोरी के कारण आज युवा जर्मनी की टीम से हार गई। 8 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक मिलने के बावजूद भारतीय टीम गोल नहीं कर सकी। मैच में जर्मनी का शुरू से अंत तक पलड़ा भारी रहा, जिसने भारतीय टीम को पूरे समय दबाव में रखा। पेरिस ओलंपिक में 10 गोल करने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह पेनल्टी स्ट्रोक पर भी गोल नहीं कर सके, जबकि सर्कल के भीतर स्ट्राइकर किसी मूव को गोल तक नहीं पहुंचा सके। आधे से ज्यादा युवा खिलाड़ियों के साथ आई जर्मनी की टीम ने तीसरे ही मिनट में हेनरिक मर्जेंस के गोल से बढ़त बना ली। इसके बाद कप्तान लुकास विनफेडर ने 30वें मिनट में गोल कर टीम को निर्णायक बढ़त दिला दी। जर्मनी गोलकीपर जोशुआ एन ओएकवू ने भारत के हर वार को नाकाम किया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में शुमार हरमनप्रीत को भी खामोश रखा। इस बीच मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 11 साल बाद हो रहे इस मुकाबले को देखने आए 6,000 से 7,000 दर्शकों को भारत के प्रदर्शन से निराशा हाथ लगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा अपने भारतीय टीम के सरपंच सा हरमनप्रीत को भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा मैच के बाद।
गोलकीपर डॉज भी हुआ, बट आई थिंक जो उसने सेव किया बहुत अच्छा सेव किया, बट ओवरऑल मैच का देखें तो हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और जो बॉल हमने मैनेज की आई थिंक बहुत अच्छी की है, बट डिफेंसली आई थिंक कहीं ना कहीं हम और अच्छा कर सकते थे एज ए टीम। सो कल के मैच में ये चीज़ें जो हमने नहीं कर पाए वो डेफिनेटली हम कल के मैच में करने की कोशिश करेंगे।
8 गोल, 1 पेनल्टी स्ट्रोक और कुछ भी नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम से उबर नहीं पा रहे पेनल्टी स्ट्रोक्स के।
देखिए, जैसा मैंने कहा कि खेल अगर अच्छा होता तो आप रिजल्ट एक्सेप्ट कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं जो मैच देखा पूरा का पूरा, उसमें एक लैक ऑफ एनर्जी नजर आई पूरी टीम में। ऐसा लग रहा था जैसे वो खेलने के इरादे से नहीं उतरे हैं, वो आधे मन से उतरे हैं, पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरे हैं। मैच के बाद जब कोच से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये एडमिट भी किया कि देर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द लैक ऑफ एनर्जी जो देखने को मिली है, और जिस तरह का अटैक नॉर्मली भारतीय टीम का होता है वो नहीं देखने को मिला है पूरे मैच में। कभी ये नहीं लगा, हालांकि अगर हम आंकड़ों पे देखें तो जरूर 7-8 पेनल्टी कॉर्नर मिले, एक स्ट्रोक मिला, कुछ चांसेस मिले, पोजेशन परसेंटेज की आप बात कर सकते हैं, पर कभी ये नहीं लगा कि भारतीय टीम जर्मनी को दबाव में रख पा रही है, या भारतीय टीम जब अटैक भी कर रही है तो कभी वो फीलिंग नहीं आई कि अब गोल होगा जाके. आपको वो अर्जेंसी नहीं दिखी, आपको वो एनर्जी नहीं दिखी फील्ड पे. ये ज्यादा निराशा करने वाली बात है, क्योंकि हमने भारतीय टीम को पहले भी जीतते हुए भी देखा है, हारते हुए भी देखा है. पर जब आप वर्ल्ड की नंबर दो टीम के साथ खेल रहे हैं, जब आप ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट टीम के साथ खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन है सीनियर में भी और जूनियर में भी, यहां जो उनकी टीम आई है उसमें 5 सिर्फ पेरिस ओलंपियंस हैं, बाकी जूनियर वर्ल्ड कप के उनके कुछ खिलाड़ी हैं. 3 आज मैच में उनके ऐसे खिलाड़ी थे जो अपना डेब्यू कर रहे थे. ऐसी टीम के खिलाफ जब आपको वो इंटेंसिटी नहीं दिखती है या जीतने का वो जुनून नहीं दिखता है, वो चीज आपको ज्यादा खराब लगती है. एक बहुत ही क्लूलेस परफॉर्मेंस दिखी भारतीय टीम से. हो सकता है मैं थोड़ा हार्श साउंड कर रही हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट आपके फेवर में ना जाए, लेकिन आपको वो खेलने का जज्बा अगर दिखे तो आपको अच्छा लगता है. पूरे मैच में कभी ये नहीं लगा कि भारतीय टीम हावी होने की कोशिश भी कर रही है सामने वाली टीम पे.
तो ये निराशा खेल प्रेमियों के साथ और उत्तरा के भी आवाज में साफ तौर पे दिख रहा है. और निराशा हमें एक और आई जूनियर टीम की ओर से भी. आज निराशा आई मलेशिया में सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टीम, भारतीय जूनियर हॉकी टीम जो है वहां पे उसे ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हरा दिया. 3 मैचों में इन्होंने 3 मैच जीते, पॉइंट टेबल पे टॉप पर अभी भी हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो जाता है, मामला बिल्कुल उलट सा जाता है कहीं.
देखिए जूनियर में मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि आपका एक ऑफ डे हो, क्योंकि आपके खिलाड़ियों के पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है. और ऑस्ट्रेलिया टीम इस तरह की है, एक इमेज बनी होती है कि आप थोड़ा सा टेंटेटिव हो जाते हो. मैचेस हमको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के तौर पे, तो बहुत बताना इतना आसान नहीं है कि क्या गलतियां हुई हैं. पर एक मैच अब 3 जीतने के बाद, और 3 मैच जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से जीते हैं. एक मैच आप ट्रेल करके फिर वापस आप आए हैं, मलेशिया के साथ आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ग्रेट ब्रिटेन को आपने हराया है. तो एक मैच आप अगर हारे हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है. मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अभी ये टॉप पे हैं, तो बाकी के एक आज जो मैच बचे हैं उसके बाद फाइनल के लिए जरूर भारतीय टीम क्वालिफाई करेगी. एक नए कोच के साथ भी वहां पे गए हैं,
बिल्कुल
एक नई टीम है वहां पे, तो थोड़ा सा एक आध मैच गड़बड़ होना आप अफोर्ड कर सकते हो. 4-0 की जगह अगर एक आध गोल हो जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता. पर जैसे मैंने कहा, एक मैच गलत, एक मैच खराब किसी भी टीम का जा सकता है.
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार को जो न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा वहां एक अच्छा रिजल्ट दिखे. और कल के लिए भी बहुत सारी उम्मीदें हैं क्रिकेट में. एक तरफ भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल सुबह 9:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगा. और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे है. इस पर एक रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं.
भारतीय टीम को श्रृंखला में वापसी करने के लिए टीम का सही चयन करना होगा. बेंगलुरु में पहले मैच में टीम इंडिया पहली पारी में केवल 46 रन पर सिमट गई थी. भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इसके बावजूद टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. एमसीए स्टेडियम की पिच पर घास नहीं है, ऐसे में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को बेंगलुरु जैसी उछाल यहां नहीं मिलेगी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था, ऐसे में भारत टर्निंग विकेट तैयार कर सकता है. रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे. शुभमन गिल वापसी करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल और पिछले मैच में शतक बनाने वाले सरफराज खान में से किसी एक को उनके लिए जगह खाली करनी होगी. सरफराज ने बेंगलुरु में 150 रन बनाकर अपना पक्ष मजबूत कर लिया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीदें रहेंगी. ऋषभ पंत ने कल अभ्यास सत्र के दौरान कुछ समय के लिए विकेट कीपिंग की थी और ये देखना होगा कि वो पूरी तरह से फिट होते हैं या नहीं. इस बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का लगातार खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है. टीम प्रबंधन आकाशदीप को मौका दे सकता है. वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है. मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन.
तो टीम कॉम्बिनेशन पर कोच गौतम गंभीर क्या कहते हैं ये भी सुन लें.
शुभमन गिल पिछले मैच में इंजर्ड थे, सिर्फ इंजरी के चलते वो पिछला मैच नहीं खेले थे, उनके जो नेक में इशू है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट, ऑब्वियसली वो वापस प्लेइंग 11 में आएंगे। बाकी प्लेइंग 11 अभी डिसाइड नहीं हुए, प्लेइंग 11 कल सुबह देख के डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ हम जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली जो भी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे वो इस तरीके से जाएंगे कि हम ये टेस्ट मैच जीत सके।
तो उतरा आपको क्या लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है?
बहुत मुश्किल है। पिछले मैच में रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग में गलती हुई है। तो जैसा गंभीर ने कहा कि सुबह देख के बेटर आइडिया मिलेगा कि क्या है, पर जैसी खबरें वहां से आ रही हैं उनसे तो बिल्कुल लगता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश करेगी भारत, और स्पिनर्स को मदद करने के हिसाब से पिच बनाई जाएगी। क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि अगर पहली इनिंग्स छोड़ दी जाए तो सेकेंड में ऐसा नहीं है कि बहुत खराब प्रदर्शन रहा था बैटिंग से, और गेंदबाजी में भी बुमराह ने पहले दो विकेट जरूर निकाले थे, लेकिन इतना कम टारगेट था कि अगर 107 की जगह 150 या 200 का भी टारगेट होता तो शायद भारतीय टीम थोड़ा सा बेटर खेल पाती, उसको डिफेंड करने थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। 100 रन का टारगेट कोई भी टीम डिफेंड करने के लिए रियलिस्टिकली सोचती नहीं है उस तरह से, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पुणे में जरूर बेटर विकेट होगी भारतीय टीम के हिसाब से। जहां तक शुभमन गिल की बात है, अगर वो वापसी करते हैं तो कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए जरूर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय टीम को। अगर आप केएल राहुल को बाहर करते हैं तो कीपिंग के लिए किसको करेंगे, क्योंकि अगर ऋषभ पंत अभी भी 50-50 हैं तो ध्रुव जुरेल 12th मैन थे पिछली बार, उनको खिलाया गया था, बट क्या ध्रुव जुरेल से ही कराएंगे फिर से ये, उनको प्रॉपर प्लेइंग 11 में लेके आएंगे? अगर ऋषभ पंत कीपिंग करते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, पर जैसा गंभीर ने कहा कि जब तक पूरी फिटनेस का नहीं पता चलेगा वो कल सुबह ही डिसाइड कर पाएंगे।
चलिए हम देखते हैं क्या कुछ रहता है। महिला क्रिकेट की ओर भी रुख कर लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
टीम इंडिया को विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की सेवाएं नहीं मिलेंगी, जो 12वीं की परीक्षा देने के कारण इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगी। अनुभवी ऑलराउंडर आशा सोबाना भी चोटिल होने के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर विश्व कप के दौरान चोटिल हो गई थीं और इसलिए उन्हें विश्राम दिया गया है। भारतीय टीम में तेजल हस्बेंड्स, साइमा ठाकुर और प्रिया मिश्रा के रूप में कई नई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी भारतीय टीम की मजबूत कड़ी है। हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिग्स को हमेशा की तरह मध्य क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
क्रिकेट से बाहर निकलते हैं, एक और अच्छी खबर आ रही है फुटबॉल के मैदान से। अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल के पहले मैच में भारत ने ब्रुनेई को 13-0 से हराया है, और अब भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को तुर्किस्तान से होगा और रविवार को भारतीय टीम थाईलैंड से खेलेगी। और लीग का दौर चल रहा है तो भारतीय राइफल संघ ने देश की पहली निशानेबाजी लीग, भारतीय निशानेबाजी लीग शुरू करने की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी आधारित इस लीग का पहला सत्र अगले साल मार्च में होगा। और एक और खबर हमारे पास है कि 2026 में आयोजित होने वाले ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों ने हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, क्रिकेट, स्क्वैश जैसे खेलों को हटाने का निर्णय लिया है और सिर्फ 10 खेल आयोजित होंगे इसमें। आपका टेक इस पर उतरा?
मुझे लगता है कि अगर इतना कर्टेल्ड है और इतना ज्यादा ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बहुत मुबारकबाद ग्लासगो को, पर भारतीय सरकार, भारतीय खेल मंत्रालय को, भारतीय सरकार को और आईओए को ये सोचने की जरूरत है कि हमारे पार्टिसिपेशन को लेके कितना सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से आगे जाना है तो भारत को भी थोड़ा सा कड़ा रुख रखना पड़ेगा। जिस तरह के खेल इंक्लूड किए गए हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा भारत को फायदा है इसमें पार्टिसिपेट करने का।
निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारे मेडल्स तो हमारे चले जाएंगे। और समय नहीं है ज्यादा बातचीत का, उत्तर आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
और चलते चलते श्रोताओं, आपको मुख्य समाचार एक बार फिर से बता देते हैं। नई दिल्ली में हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जर्मनी ने 2-0 से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से पुणे में। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने देश की पहली निशानेबाजी लीग शुरू करने की घोषणा की। और अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल मैच के अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल के पहले मैच में भारत ने ब्रुनेई को 13-0 से हराया। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर, क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। तो फिलहाल गुड नाइट, शुभ रात्रि।